दोनों के आचार्य लोग निशांत लीला का स्मरण करते थे, अष्टकालीय लीला का, जिसमें पहला निशांत लीला, दूसरा रात्रि लीला, तीसरा प्रबंध लीला, चौथा मध्यान्ह लीला, अपराह्न लीला, सायन्ह लीला, प्रदोष लीला, और इसके बाद में फिर एक और नई लीला का पहले एक और, उसके बाद में तभी नई लीला या मध्यरात्रि, ये आठ लीलाएं। वैष्णव लोग, हम लोग आचार्य लोग इसका स्मरण, किंतु कौन काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब छोड़ करके, यह सब छोड़ करके तब फिर अधिकारी होगा वो। तो उसका कुछ रूप में रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है और उसका विस्तार पूर्वक जीव गोस्वामी ने कवि कर्णपुर ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, गोविंद लीलामृत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कृष्ण भावनामृत में जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में, और संकल्प उत्कल्प द्रोण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक छोटी सी पुस्तिका है उसमें, और भी बहुत सी पुस्तकें हैं किंतु ये प्रधान है। उनमें से जीव गोस्वामी ही मूल, रूप गोस्वामी उन्हीं का ये मूल है। तो अब इससे सही निशांत लीला का सूत्र का रूप में जो हमारे गोस्वामी ने वर्णन किया है इसका भी कीर्तन करेंगे। प्रतिदिन वो एक होगा और प्रतिदिन 4:30 बजे
आ Thank you. श्रीरामस्य एक तो कार्तिक महीना स्वयं ही पवित्र से भी पवित्रतम है। कृष्ण की जितनी अधिकांश लीलाएं हैं, विशेष करके सर्वोत्तम लीलाएं हैं, ये कार्तिक महीने में ही हुई है। सर्वोत्तम से उनकी जितनी भी सर्वोत्तम लीलाएं हैं सब इसी मामले में कार्तिक महीने। इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका जी, यदि कोई थोड़ी भी आराधना करता है राधा कृष्ण की, राधा गोविंदन जी की इस महीने में, तो उसे प्रसन्न होकर के ये जीवन किशोर किशोरी जी अपनी सर्वोच्च कृष्ण सेवा प्रदान करती है। थोड़ी सी देर कृष्ण का महीना है, पुरुषोत्तम नहीं है, किंतु राधा जी का महीना है, ये कार्तिक, इसलिए इनको कार्तिकेश्वरी कहो, कार्तिक की ईश्वरी। कार्तिक को उर्गिमास भी कहते हैं। उर्गिमा ने क्या शक्ति, शक्ति का संचार, ऊर्जा शक्ति, विद्युत, बिजली। आजकल जो कुछ भी उन्नति हो रही है ये ऊर्जा को लेकर के हो रहा है, विद्युत को लेकर के, जितना सब कुछ हो रहा है तो ऊर्जा प्रधान है। यदि हमारे शरीर से ऊर्जा निकल जाए, गर्मी निकल जाए तो हम लोग मर जाएंगे। तो ये कृष्ण की ऊर्जा है, ऊर्जेश्वरी कृष्ण की ये शक्ति है। कृष्ण में से शक्ति निकाल दी जाए तो शक्तिमान, निराकार, निर्विशेष, निरंजन, निर्गुण, ये सब रह जाए तो कृष्ण ऐसे रह जाए। इसलिए कृष्ण की ऊर्जा यही है। श्रीमद् भागवत में तेजो वार निदान जस विमर्श ये कहा गया है, तेजो बार मृदम जब विनिमयो त्रिसर्गो अमृता। यहाँ पर तेजो मैंने यही ऊर्जा, किसको ध्यान करते हैं भगवत भागवत में, किसको ध्यान करने के लिए कहा गया, सत्यम परम, सत्य स्वरूप है, सत्य श्रेष्ठ है, सबके आदि है, उनका भी ये गायत्री का ये अर्थ या भाष्य है श्रीमद् भागवत पूरा। इसलिए गायत्री में आया है धीमहि, धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि, देवस्य भर्ग धीमहि। तो ये श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में किसका धीमहि आएगा, सप्तम परम धीमहि। ये जो गायत्री है, गायत्री का एक अर्थ है, तो गायत्री में देव की जो शक्ति है, जो सूर्य को भी ऊर्जा प्रदान करती है, हम उनका ज्ञान। तो कौन है, श्रीमती राधिका जी है, शक्ति है। बिना शक्ति के माध्यम से शक्तिमान को नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वेदों में, परिषदों में, शास्त्रों में सर्वत्र ही इन्हीं का ध्यान किया गया है। इसलिए इस श्लोक में भी सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप है, कृष्ण की परम शक्ति है, पराशक्ति है, स्वरूप शक्ति है, उन ऊर्जा रूपी जो शक्ति देवी है, जो हमने भी ऊर्जा, ऊर्जा में नहीं है क्या, कृष्ण प्रेम रूपी ऊर्जा को हम लोगों को देकर के सहज रूप में ही हमारे स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती है। और
श्रीमती जी का उसमें ही वक्त लाया।
श्रीमद्भागवत में राधा जी को जब निकाल दिया जाए मान्य तो कुछ नहीं रहा, इसलिए दुर्गा देवी जो श्रीमती राधिका जी है और भी इसके बहुत से विशिष्ट कर्म है। कामदात्री में ऊपर से नहीं दिखता, श्रीमती राधिका जी नहीं देखती, किंतु कामदेव का और यथार्थ भाव वही है। राधा जी के विचार में है तो वो आनंद नहीं रह सकते, कामदेव नहीं हो सकते हैं, इसलिए राधिका जी की ही राधिका जी के वजह से ही कृष्ण रसो वही सब इत्यादि। तो इस महीने में राधिका जी को आराधना थोड़ी सी भी आराधना आज की जाए तो वो जल्दी से प्रसन्न हो सके सर्वस्व दे को दास्त कर देगी, इससे परम और इसलिए हमारे जितने भी गोस्वामी लोग हैं राधा जी की ही आराधना करते हैं, उन्हीं की प्रधानता है, कृष्ण की भी करते हैं किंतु राधा जी के तरफ में प्रशांत का इंक्लिनेशन होता है, उनका झुकाव किसी तरफ में राधा जी के तरफ, तभी कृष्ण प्रसन्न होते हैं, बिना राधिका जी के प्रसन्न हुए नहीं करते। इसलिए ये उर्ज महीना कहलाता है, जो सावधानी से श्रद्धा पूर्वक कुछ भी यदि इस महीने में आराधना करेगा तो ये जुगल प्रसन्न हो जाते हैं, राधिका जी प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष करके इस मातृमंडल में ब्रज मंडल में यदि और उसमें भी यदि वैसे उन्नत श्रेणी के जो वैष्णव लोग हैं उनके अनुगत्य में यदि हम लोग आए नाम कीर्तन प्रधान में यदि आए, हम लोग का इस महीने में नाम प्रधान है राधा दामोदर जी का, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये था, इन सब नामों के माध्यम से राधा कृष्ण का थोड़ी सी आत्मा करें वो क्षण हो जाए। इसी महीने में पहले इसी महीने में बतला रहे हैं, इसी महीने में कृष्णचंद्र जी दामोदर हुए जसोदा दाम, जसोदा जी इसी महीने में दधि मंथन कर रहे सवेरे उठ करके और गोविंद दामो गर्वाग्रदेशी इसका गायन करते, बड़े मधुर स्वर से गायन करते हैं, सभी गोपियां अपने अपने घरों में गधि मंथन करते हैं, यशोदा जी भी गधि मंथन करते और ये प्रतिपदा जो आएगा अभी उसके बाद में अमावस्या आएगी, अमावस्या के बाद ही ये प्रतिपदा आएगी, उसी प्रतिपदा के दिन ही ऐसी लीला हुई थी, यशोदा माँ गधि मंथन कर रही थी और कृष्ण पलंग से उठ करके आधी नींद में गिरते पड़ते ओ करते हुए माँ को माँ के समीप आ रहा थी, मैया हमको दूध पिलाए, पर ब्रह्म उनके दूध के लिए ललक रहे हैं और यशोदा मैया तन्मय होकर के उनके नाम कीर्तन में और दधि मंथन में उनको मक्खन इत्यादि खिलाने के लिए एकदम तन्मय होकर के कीर्तन करिए गोविंद दामोदर माँ। कृष्ण ने एकदम निकट आए दधि को मंथन को पकड़ लिया, यशोदा माँ ने कृष्ण को देखा बाल चंद्र रस में भर करके अपनी गोदी में बैठा लिया और उसको संकल्प से छिपा करके और दूध पिला देते, आंखों में आंसू आ गए और स्तन में इतना दूध आया कि अपने आप झरने लगे, कृष्ण भी ललक करके पीने लग गए। उस वक्त जब यशोदा मैया के स्तन में इतना दूध विश्व ब्रह्मांड का दूध उन्हीं से पूरा होता है निकलता है, और इधर कृष्ण का तो दामोदर जिसके उधर में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड सब कुछ उनके पेट में है, वो पेट भरने वाला नहीं और ये दूध समाप्त नहीं है। मैं सोच रहा था कि भाई तुलसी जी की कोई एक माला नहीं दिया, उन्होंने मेल दिया, तो तुलसी की माला आ जाती तो अच्छा था, जैसे कि तुलसी जी के लिए माला आ गया अच्छा होता। तो रोज सवेरे तुम लोग ही व्यवस्था करो, तुलसी जी की एक माला नहीं चाहिए, गुरु जी की एक माला नहीं चाहिए। तो आज ही के दिन में ये दूध पिला रही थी, इतने दूध उफलने लग गया और ये यशोदा जी कृष्ण को छोड़ करके और दूध की रक्षा करने के लिए चली गई। आकर देखा कि दूध फैला हुआ है, मैंने ये काम किया, घर में गई देखी जैसे वही चोरी कर रहा है मक्खन, इनको कुछ क्रोध का रोष आ गया, ये छोटे सा बच्चा ऐसा कर रहा है, उनको पकड़ने के लिए दौड़ी। जिनको तपस्या के द्वारा शुद्ध जिनका मन हो चुका है वो लोग भी नहीं पकड़ सकते मन के द्वारा, और कृष्ण से भी तीव्र गति से पकड़ कर दौड़ करके और उनको पकड़ लिया पीछे से। रोने लगे जब, जब खूब रोने लग गए तो उस समय जो तो ने हाथ से लड़किया फेंक दी, अच्छा तुम्हें बांध कर चलो। उस समय में यशोदा जी अपने केश के रेशम की डोरी से उनको बांधने लगी, दो अंगुल कम पड़ गई, दूसरी दृष्टि मंगाई, तीसरी दृष्टि मंगाई, ब्रज की सारी दृष्टियां आ गई, कृष्ण की कमर चार अंगुल के बाद सोने की जल्दी बंधी हुई है, करनी कमर जैसी की तैसी रस्सी लंबी होती गई, किंतु एक बार भी वो पूरा नहीं बंधन दो आंगुल कम होता गया। वहां पर समस्त एकत्रित गोपियां थी और यशोदा मैया देख रही है ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये दो अंगुल रस्सी बढ़ रही है कमर बढ़ नहीं रही, क्या बात नहीं सुन। यशोदा मैया के आंखों में आंसू आ गए, आंखें लाल हो गई, क्रोध भी आया, कुछ रोष भी हुआ, कुछ ग्लानि भी हुई, ये हमारा पेट से ये निकला इसको हम बांध नहीं सकती एक छोटे से बच्चे को। उस समय में कृष्ण को कृपा बढ़ पड़ी, कृपया स्वबंधने कृपा से जरा यशोदा मैया इतना परिश्रम ले लिए करते, सवेरे से बांधते बांधते दोपहर हो गया, खाया नहीं पिया नहीं, पसीने से एकदम सफर हो रहे, बस दया आ गई अपने आप पर। कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता जिसका ऊपर नहीं है नीचे नहीं है भीतर नहीं है, जिसकी दसों दिशाएं आस पास में नहीं है, जो भीतर में अणु के अणु और देहू के देहू है, उनको कैसे कोई बांध सकता है, आकाश को कोई कैसे बांध सकता है जिसका कोई आधार ही नहीं है, आकाश ये बंधेगा तो आकाश के भी आकाश है, उनको कोई कैसे बांधे जिसका बाहर नहीं है भीतर नहीं है ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, उसको क्या भी बांधेगा, कोई वस्तु है तब तो, ये जगत की कोई वस्तु नहीं है ऊपर नीचे इनका कोई है बांधने में कहा। किंतु उनको भी प्रेम से उन्होंने बांध दिया, केवल अपने सिर की रस्सी से ही रेशम की डोरी से ही बांध दिया, इसलिए ये प्रेम के वश में होकर के बंध गए, इसलिए कृष्ण का नाम पड़ गया यशोदा धाम। इसी महीने में रात हुआ, रात में गोपियां कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, तो जब वो प्रकट हुए मनमत मनमत के रूप में और उनके द्वारा रचित आसन पर जब बैठे उनके उत्तरीय वचनों के ऊपर में मनमत मनमत रूप धारण किया। उस समय में गोपियों ने लड्डा भी चाखा इत्यादि जी ने उनका पीताम्बर कृष्ण का पीताम्बर राधा जी की ओढ़नी के साथ में बांध दी। आप कभी नहीं कहीं दर भर जाए इसलिए हो गए राधा दामोदर। ये राधा दामोदर जी रूप गोस्वामी के आराध्य हैं। इन्होंने अपने आराध्य को उत्तराधिकार रूप में जी गोस्वामी को दे दिया। वृंदावन में राधा दामोदर जी को कुछ सेवा की त्रुटि के कारण बोले जहां मैं अब जहां मेरी सेवा अधिक होती है वहां चला जाऊंगा, इसलिए वो कहां चले गए जयपुर में मां की सेवा ग्रहण करने के लिए चले गए। आज ही की इसी में कृष्णचंद्र जी गोपियों ने जो पिछले साल अग्रहण का महीना हेमंत ऋतु में जबकि कार्तिक पूर्णिमा होती है, अभी यह है शरद पूर्णिमा और वो होती है कार्तिक की पूर्णिमा, अंत में एक महीना बाद उत्थान एकादशी के बाद, तो उस दिन से पूर्णिमा से वो आरंभ करती हैं गोपियां कात्यायनी व्रत और एक महीना तक कात्यायनी की आराधना करती हैं। सवेरे चली जाती है कब 3 बजे निकल जाती है अपने घरों से, अंधकार हो चाहे जो कुछ भी हो, मेघ बादल और जो कुछ भी हो, सभी उत्कंठित रहती है कब चलेंगी कब चलेंगी। और सब छोटी छोटी बालिकाएं 10, 12, 8 से लेकर के 12, 13 वर्ष की जितनी भी गोपियां हैं जो कन्याकाएं हैं वो सब जाती हैं, तीर घाट पर जाती हैं, बड़ी कठोर आराधना करती हैं, जाने के दिन में सवेरे स्नान करती हैं, स्नान करके कात्यायनी जी की मूर्ति बनाकर उनका अर्चन करती है, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि देती है और एक मंत्र पाठ करती है। जब उनकी पूजा पूरी समाप्त हो जाती है क्या करती है, कात्यायनी महामाये महाजगन्य अभिश्वरी नंद रूप सुतम देवी पति में सुनते, बस यही उनका मंत्र है, एक मंत्र। हे महाजोगिनी, जोगिनियों की भी अधिश्वरी आप, आपके चरणों में हमारी एक प्रार्थना है। हमारी आराधना का मूल तात्पर्य एक क्या है, हे जोगिनेश्वरी आप हमारी इस प्रार्थना को पूर्ण कर दीजिए। नंद गोप सुतम, नंद गोप के ये सुत है वासुदेव जादव सुतम, ये नहीं कहा देवकी सुतम, ये नहीं कहा, या भगवान भगवान कृष्ण, ये सब कुछ भी नहीं कहा। नंद गोप सुतम, नंद देव के ये जो परम मधुर उज्ज्वल नीलमणि है किशोर कृष्ण है, भगवान सगवान नहीं जानती वो, बस इन्हीं को आप हे देवी हमको हमारा पति बना दी। यहां पर पति कृष्ण ने पति रूप में तो स्वीकार किया नहीं, पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया, तो इसकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई।
इनको अपनी पत्नी से भी लाख गुण श्रेष्ठ, जो गोपियां कमना ने कल्पना नहीं कर सकती थी, वो कुमारियां उनको वो चीज दिया पति से। पति होना माने दास्य भाव, दासी का भाव, और अपने समतुल अपने से भी बढ़ करके उनको दे दिया। ये गोपियां हैं कौन? अपने पूर्व जो अभी निकटतम का जो पूर्व जन्म है उसमें कोई कोई रामचंद्र जी के समय में दंडकारण्यवासी 60,000 ऋषि वर्ग है, वो किस दृष्टि से उपासना करते हैं? वो सब श्रीमद् भागवत पढ़ करके गोपियों का चरित्र सुना, और जब कब सुना, ये तो बात तो है चैताली की और सुन लिया तो, अरे उसके पहले वाले द्वापर में अनंत कोटि द्वापर युग चले गए हैं, आएंगे भी अभी, इसलिए ऐसा प्रश्न नहीं होगा। तो उसमें उन्होंने उसी प्रकार से जब देखा तो वैसे ही भाव हुआ कि गोपियों ने कृष्ण को जैसे पाया है, जैसे वो रास में उनको जिस प्रकार से उनकी स्तुति वर्धन की है, सबसे अधिक गोपियों पर कृपा हुई है उनकी। नायो अंग सियोतांतर सहित प्रसाद सब जो सीता नलिन गंध ऋचो को तो अन्य रासवे दंड गृही कदम था लफाशीषण जो उर्गाय
उदगार
लक्ष्मी जी को नहीं, द्वारका की महर्षियों को जो नहीं हुआ, सीता जी को नहीं हुआ, जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जो आशीष लाभ नहीं किया, कृष्ण का हुआ आशीष इन गोपियों ने पाया। कैसे पाया? भीख मांग रहे हैं, जगत के जो ब्रह्म हैं वो ब्रह्म प्रेम की भीख मांग रहे हैं किन से? इन गोपियों के सामने उनके गले में हाथ देकर के आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करके जैसे बच्चे मैया की गोदी में मैया दे कोई कुछ ना, ऐसे मानो गोपियों के गले में हाथ लगा करके उनसे प्रेम की भीख मांगने लगे। कहीं तुम लोग हमको छोड़ करके अंतर ध्यान मत हो जाना, तुम लोग चली न जाना, राजगादी छोड़ करके चले गए तो रास बंद हो गए, इसलिए प्रेम की भिक्षा कृष्ण जहां मांग रहे हैं ऐसा आशीष किसी को नहीं मिला। इसलिए उनकी ये भावनाओं को देख करके उन ऋषियों ने 60,000 ऋषियों ने आराधना की रामचंद्र जी की कृपा से, और भी उनकी उत्कंठा बढ़ गई, और रामचंद्र जी की कृपा से वही अब जोग माया के माध्यम से यहां पर जन्म लिया है। तो उनकी लालसा कैसी रही होगी? पति करो, उनकी कभी लालसा ऐसी नहीं, पति वहां पर दूसरे आते हैं, इसलिए यहां पर समझना चाहिए गोपियों के भाव के लिए उन्होंने आराधना की। कृष्ण ने उसको कहा जाए अच्छा ठीक है, ब्रजम जाहि, ब्रज में जाओ, लौट जाओ, तुम्हारी आराधना पूर्ण हो गई, आराधना पूर्ण हो गई, मैं प्रसन्न हो गया। अरे आराधना की कत्यायनी की चाहिए कैसे प्रसन्न हो गए? आराधना को प्रसन्न होना चाहिए ना, जिसकी आराधना की कत्यायनी देवी को प्रसन्न होना चाहिए, जो वो प्रसन्न होकर क्या करके बढ़ दे। हमने देवी जी की आराधना कोई तो कृष्ण क्यों आएंगे? तो ये ऐसे तो मालूम होता है जैसे गोपियों ने आराधना किसकी की? कात्यायनी देवी की नहीं थी, कात्यायनी देवी की भी जो मूल है इसलिए वो आए। और उनको इस आगामी आने वाली रजनियों में तुम्हारी इच्छा तो मैं पूर्ण करूंगा। एक वर्ष के बाद में इसी समय में उन्होंने आज बंसी बजाई, रास किया सर्वोत्तम लीला जिसमें कि ब्रह्मा की एक रात्रि अर्थात हम लोगों के मानते 1000 चतुर्युगों की रात्रियां एक साथ से मिली, नहीं तो इतनी छोटी रात में एक दिन की रात में 12 घंटे में उनकी ये सब लीलाएं नहीं हुई। और उसमें कृष्ण ने कहा न पारे हम निर्बद्ध संजीला, कृष्ण ने भी एक तरह से हथियार डाल दिए और कहे मैं तुम लोगों का ऋणी हो गया, आज तक मेरी प्रतिज्ञा थी जो जैसे भजन हमारा करेगा वैसा ही पूर्ण कर देंगे, जे जथान नाम प्रपदल दे काम तो सही हो जाते, किंतु आज कृष्ण हार गए, बोले ये नहीं मैं हार गया तुम लोग जीत गए, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारी इच्छा को हम लोग पूर्ण मैं नहीं पूर्ण कर सकता, न पा रहे हम निर्बद्ध देवताओं की लाखों वर्ष की आयु पा करके भी मैं नहीं पूर्ण कर सकता। इसलिए कृष्ण यहां पर इसीलिए हमारे सुखदेव गोस्वामी इत्यादि जी ने जो वर्णन किया बंदे नंद ब्रजेश नाम इत्यादि ये सब लीलाएं आज ही के दिन से आज ही के रात में हुई थी शरद पूर्णिमा के दिन। इसी महीने में गो गोवर्धन इत्यादि की पूजा हुई थी, इसी महीने में गोवर्धन जी का अन्न को उपयोग हुआ था, गोपों ने जो किया था इंद्र की पूजा को बंद करके और इनकी पूजा की थी, आज ही इसी महीने में कार्तिक महीने में हुआ था। नंद बाबा जी से कृष्ण ने पूछा ये आज इतना पूरी पकवान जो बन रहा है मैया बना रही है मुझको आज दूध नहीं पिला रही है, आज हम उनके पास में फटक नहीं जाते उनके निकट भी नहीं जा सकते, मैया दूध भगा देती है मैया किस लिए बना रही है। तुमने बड़े प्रेम के साथ में दुलार से कहा आज इंद्र की पूजा होगी, इंद्र मख है इंद्र का जगह पूजा होगा, इंद्र कौन है मन कुछ नहीं जानते भोले भाले बच्चे। उन्होंने कहा विश्व का भरण पोषण करते हैं, वर्षा कराते हैं और अन्न उगाते हैं और सब लोगों का पालन पोषण करते हैं, पशुओं को भी चारा इत्यादि हो जाता है घासें हो जाती है, पानी न रहे तो आदमी मर जाएगा, इसलिए वो जीवन स्वरूप है इसलिए उनकी पूजा हम लोग करते हैं। तो जहां पर इंद्र की पूजा नहीं होती वहां क्या होता है नहीं तो वो कुछ नहीं बोल सके। तो उन्होंने कहा जैसे हमारे गिरिराज गोवर्धन तो पानी बरसाते हैं गायों को चारा खिलाते हैं हम लोगों को अन्न दान करते हैं छाया दान करते हैं हम लोग जीत रहते हैं इसे एक ही पूजा, तो उनके दृष्टि के सामने वो कुछ नहीं बोले और उनकी पूजा हुई। इंद्र जी रुष्ट हो गए, 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार बरसती हुई, एक तो जड़ा और दूसरा ये सभी लोग कांपने लग गए और ब्रज डूबने लग गया एकदम पूरा, यमुना नदी एकदम भर गई और एकदम पानी से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। उस समय उन लोगों ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण ने उसी दिन आकर के और उठा लिया और ब्रज की रक्षा की। गोपियों से इसी दिन प्रथम मिलन हुआ, इस समय उनकी उम्र 7 वर्ष की थी, 7 वर्ष की मैंने कृष्ण हृष्ट पुष्ट है ना तो ये 10 वर्ष 12 वर्ष के जैसे लगते हैं, उस समय में इनका प्रथम मिलन। इसके बाद में इसी माह में कृष्ण अपूर्व जी गए ब्रज से गोकुल में, गोकुल मैंने वहां नंद गोकुल नंद गांव वहां पर गए और छल बल कल करके